الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری درس قرآن کی کلاس ہوتی ہے جس میں ہم سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات چل رہی ہیں سورہ یوسف کی وہ 102 سے 109 تک کی ہیں، جن میں سے ہم 106 تک کا ترجمہ پچھلی کلاس کے اندر پڑھ چکے تھے، تو آج جو تلاوت کی گئی وہ بھی 107، 8 اور 109 آیات تھیں. ان کا ترجمہ ہم پڑھ کے پھر اس کے بعد خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کریں گے. تو سورہ یوسف کا اب جو ہے وہ اختتام قریب ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں یعنی نبی علیہ السلام کو تو براہ راست بلا واسطہ اور ہمیں بال واسطہ مخاطب ہو کر کے یہ اب باتیں بتا رہے ہیں، یعنی کنکلوسیو قسم کی باتیں، کنکلورنگ دا سٹوری کہ یہ خبریں ہیں غیب کی ہم بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ ٹھہرانے لگے اپنا کام اور فریب کرنے لگے. یہ پیچھے سے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 102 سے. اور اکثر لوگ نہیں ہیں یقین کرنے والے اگرچہ تو کتنا چاہے، یعنی آپ کتنا بھی چاہیں اکثر لوگ جو ہے نا وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے. اور آپ مانگتے نہیں ان سے اس پر کچھ بدلہ، یہ تو اور کچھ نہیں مگر نصیحت ہے سارے عالم کو. یہ جو کتاب آپ کو ہم نے دی ہے یہ تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، یہ کوئی پیڈ سروس کو تھوڑی ہے کہ یہ آپ کو کچھ پے کریں گے تو پھر آپ ان کو یہ نصیحت دیں گے. یہ تو سب کے لیے فری ہے، یہ نصیحت یعنی قرآن یہ تو سب کے لیے فری ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اور بہت ساری نشانیاں ہیں، بہتیری نشانیاں ہیں آسمان اور زمین میں جن پر گزر ہوتا رہتا ہے ان کا، اور وہ ان پر دھیان نہیں کرتے. یعنی نشانیاں تو جا بجا بکھری ہوئی ہیں، جس طرح ہم کسی سڑک پہ جاتے ہیں نا اس کے اوپر بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، کسی ہائی وے پہ جاتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سائنز لگے، نیون سائنز کہتے ہیں ان کو، بل بورڈز کہتے ہیں ان کو. تو یہ نشانیاں ہوتی ہیں مختلف پروڈکٹس کی، بنانے والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، ان کے اوپر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان کے جو ہے پیغامات لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی نشانیاں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں. اب ہم بل بورڈز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پروڈکٹ یاد آ جاتی ہے، ہمیں پروڈکٹ کا مینوفیکچرر جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے، اس کی طرف دھیان چلا جاتا ہے. ہم اللہ رب العزت کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں جاتا، تو یہ تو ہمارا اندھاپن ہوا، ہمارا جو ہے نا وہ ہماری غفلت ہوئی اور ہماری جہالت ہوئی کہ ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہے نا. تو تصویریں، تو بھائی تصویریں پڑھنے اس کے لیے تو کوئی لینگویج بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تصویریں تو ایک جاہل آدمی بھی دیکھ لیتا ہے اور اسے بھی سمجھ جاتا ہے باتوں کو. تو اللہ رب العزت کے بل بورڈز تو ویسے بھی تصویروں کے پر مبنی ہیں. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ گزرتے ہیں لیکن دھیان نہیں کرتے. تو یہ تو پورا کا پورا ہمارے اوپر بھی فٹ آ رہا ہے کہ ہم بھی گزرتے ہیں نشانیوں کے اوپر سے اور ہم ان کے اوپر دھیان نہیں کرتے. اور نہیں ایمان لاتے بہت لوگ اللہ پر مگر ساتھ ہی شریک بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں مکس کرتے ہیں، اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. کیا نڈر ہو گئے اس بات سے کہ آ ڈھانکیں ان کو ایک آفت اللہ کے عذاب کی، غاشیہ جیسے غشی طاری ہو جانا، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں یہ شخص غشی کھا کے گر گیا، اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی. تو وہ جو بے ہوشی طاری ہونی ہوتی ہے نا اس کو، اس کے لیے عربی کا لفظ ہے غشی. تو غاشیتن جو کہ तारी हो जाती है किसी के ऊपर, तारी हो जाने वाली है। गाशियतुन, अल्लाह का अजाब एक ये भी है जो कि ऊपर से आकर के ढांप लेता है, तारी हो जाता है किसी के ऊपर। औ तातियहुम अस्साअतु बग्ततुन वहुम ला यशउरून, या आ पहुंचे अचानक से एक घड़ी, फाइनल आवर, सा अस्सा अलिफ सीन के साथ, तो कयामत जो है वो आ जाए इनके ऊपर और इनको शऊर भी नहीं हो, उसको बिल्कुल अचानक आकर के पकड़ ले। आगे कुल हाजी सबीली, कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। हाजी सबीली, मेरा रास्ता है ये। अदउ इलल्लाह, मैं दावत देता हूं अल्लाह की तरफ, यानी ये जो जिस रास्ते की तरफ मैं दावत देता हूं, ये रास्ता कहाँ लेकर के जाता है? अल्लाह की तरफ लेकर के जाता है। इसी रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह के पास पहुंचोगे, इसके अलावा किसी रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह तक नहीं पहुंचोगे, किसी और जगह पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता है। इसी रास्ते को जो है वो शरीयत कहा जाता है, इसी को सिरात मुस्तकीम कहा जाता है, इसी को नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत कहा जाता है। ये मुख्तलिफ नाम है, थोड़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ ताबीरात के साथ, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये ही रास्ता है। अब इस रास्ते के ऊपर कोई ना चलना चाहे, पहलू तही करे, उसको अवॉइड करे, तो वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता। यानी अल्लाह तक पहुंचने का मतलब अल्लाह को राजी नहीं कर सकता, अल्लाह की मोहब्बत नहीं पा सकता। ठीक है, तो कोई पहलू तही करे यानी अवॉइड करे इस रास्ते को, तो वो अल्लाह की रजा नहीं पा सकता। कोई इस रास्ते को छोड़ करके किसी दूसरे रास्ते पे दौड़ना शुरू हो जाए, भागना शुरू हो जाए, मेहनतें करना शुरू हो जाए, तो वो भी अपनी मेहनतों, मुजाहिदों के बावजूद वो अल्लाह ताला की रजा नहीं पा सकेगा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम का काम है कि हाजही सबीली अदउ इलल्लाह, और शैतान का काम है बस किसी ना किसी तरीके से जो भी बन पड़े इंसान को, बनी आदम को, इस रास्ते पर चलने से रोके, इस रास्ते पर चलने से रोके, या तो अवॉइड करवाए या ये कि किसी और रास्ते के ऊपर दौड़ाना शुरू कर दे। ये तो सुस्ती होती है ना कि इंसान, मैं बैठा हुआ हूं, मैंने किधर कहीं नहीं जाना, तो वो बस कहीं भी नहीं जा रहा, वो कहीं भी नहीं दौड़ रहा, बस सुस्ते में बैठा हुआ है, टाइम जाया कर रहा है, सो रहा है, खा पी रहा है, और बस कुछ नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये एक रास्ता है, यानी एक तरीका है उस रास्ते से महरूम रहने का, और दूसरा तरीका यह है कि बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मुजाहिदा कर रहा है, लेकिन सीधे रास्ते पे नहीं कर रहा, उल्टे रास्ते के ऊपर कर रहा है। फिर फरमाया कि यानी आप नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमा रहे हैं अल्लाह ताला ना, कि ये कह दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूं, अला बसीरतिन, समझ बूझ कर, समझ बूझ कर, यानी मैं अक्लो शऊर के साथ इस रास्ते पे बुला रहा हूं, ऐसी रैंडमली नहीं बुला रहा, ऐसे ही जो है ना मैंने कोई फाल नहीं निकाली हुई कि मैंने जो है ना बस एक दिन सोचा कि मैं कुछ बना लेता हूँ अपना, है ना, बस अपनी तरफ से कुछ बना लेता हूँ और रैंडमली पिक कर लेता हूँ कि भाई हाँ भाई अकड़, वो कहते हैं बचपन में, कहते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो 80 90 पूरे 100, और उसमें से जो है ना वो कोई जहाँ पे वो चोर निकल के भागा तो भागा जिधर जा करके, है ना, ये म्यूजिकल चेयर के जिस तरह से वो होता है, म्यूजिक जिधर बंद हुई ना उसी कुर्सी के ऊपर बैठ गए, उसी तरह ये लोग फाल निकाला करते थे। ठीक है, एक परिंदे को उड़ा दिया, परिंदा अगर इधर चला गया तो ये फैसला हो गया, अगर परिंदा जो है वो बाएं तरफ चला गया तो ये वाला फैसला कर लिया। ठीक है ना, इस तरह से मैंने नहीं किया इस रास्ते का इंतखाब, ये जो रास्ता है ना ये मैंने सोच समझ करके, अकल समझ करके ये मुझे ऊपर से मिला है और मैंने इसको इख्तियार किया है और मैं इसकी तरफ तुम्हें बुला रहा हूं। अना, मैं भी, वा मन इत्तबानी, और वो भी जिसने मेरा मेरी इत्तबा करी, जिसने मेरी इत्तबा करी, यहाँ पे जो मेरे साथ है, जो इत्तबा करता है वही साथ होता है। तो इसके लिए साथ का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इत्तबा करने वाले का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम भी सोच समझ करके, जानबूझ करके, दलील के साथ, सोच समझ जानबूझ कर, जानबूझ करके का मतलब क्या कि दलील के साथ, ठीक है ना, मेरे पास बाकायदा इसके ऊपर ठोस दलील है, जिसके साथ मैं बुलाता हूं और जो मेरे साथ हैं वो भी बुलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इस उम्मत में दावत जो है ना वो सिर्फ नबी की जात में मैसूर नहीं रही कि बस नबी अलैहिस्सलाम ने जिसको बुलाया उसको बुलाया और बाकी लोग जो है ना उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, नहीं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला ने ये सबसे पहला अमल किया, सबसे पहले मुसलमान मर्द कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी तआला, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी इस्लाम लाते ही फौरन बुलाने के लिए चले गए, ये नहीं कहा कि अब मैं जाता हूं मस्जिद वहां पे जाकर के नमाजें पढ़ता हूं बस। बुलाने का काम तो नबी अलैहिस्सलाम करेंगे क्योंकि वो अल्लाह के नबी है, मैं तो नहीं हूं अल्लाह का नबी, राइट। अबू बकर सिद्दीक रज़ी ऐसे करके बैठ नहीं गए बल्कि फौरन लग गए दावत के काम के अंदर, और अशरा मुबशरा में से कम अज कम 5 या 6 अशरा मुबशरा सहाबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी के बुलाने की वजह से इस्लाम में आए, ये जुबैर रज़ी, ये तलहा रज़ी और भी 2-3, ठीक है। तो इस उम्मत में दावत का काम जो है वो पहले दिन से उम्मतियों का भी काम है। अच्छा, मजे की बात यह है कि सबसे पहली मुसलमान कौन थी? अबू बकर सिद्दीक रज़ी पहले मुसलमान नहीं थे, वो तो पहले मुसलमान मर्द थे। पहली मुसलमान असल में कौन थी? औरत थी, ठीक है, औरत थी। और जिस वक्त वो मुसलमान हुई थी उस वक्त तो पर्दे का भी हुक्म नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, दावत का काम तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु को करना चाहिए था। कभी सुना आपने कि खदीजा रज़ियल्लाहु जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम की दावत लेकर के वो मक्का मुकरमा की गलियों में जाना शुरू हो गई, अपने रिश्तेदारों के पास जाना शुरू हो गई और उनको बुलाना शुरू हो गई? कभी सुना आपने? कहीं पढ़ा आपने? पढ़ा हो तो मुझे भी बता दें, मेरे इनमें तो नहीं आया अभी तक, ठीक है। तो क्या उनकी उनका ईमान कमजोर था? नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, उनका ईमान कोई कमजोर ईमान था? उनको दीन की फिक्र नहीं थी, उनको दीन की फिक्र नहीं थी, उनको अल्लाह के बंदों के साथ खैरख्वाही नहीं थी, राइट। हालांकि दीन तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीन नसीहा, दीन तो सरासर खैरख्वाही है, राइट। और जहां खैरख्वाही नहीं है वहां पे दीन ही नहीं है, और जहां पे दीन नहीं है वहां पे खैरख्वाही नहीं है। खदीजा रज़ियल्लाहु जो है उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं होता था, उस जमाने में फोन नहीं होते थे कि अपने रिश्तेदारों को फोन कर लिया, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज दिए या और किसी जरिए से, ठीक है। खदीजा रज़ियल्लाहु ने दावत का काम शुरू नहीं किया, खदीजा रज़ियल्लाहु ने क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम अपने शौहर को संभाला। क्या किया उन्होंने? शौहर को संभाला, शौहर को सपोर्ट किया। जब भी अंग्रेजी का एक मुहावरा है, अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, राइट। और ये मुहावरा नबी अलैहिस्सलाम और अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु से ज्यादा किसी के ऊपर नहीं फिटा सकता, क्योंकि दुनिया व माफीहा में सबसे सक्सेसफुल इंसान कौन है? वो हजरत खदी हजरत नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है ना। तो बीवी का काम क्या होता है? मर्द को सपोर्ट करना, और मर्द इस सपोर्ट के ऊपर जो है ना फिर वो दुनिया जहान के अंदर दीन का काम करता, खैर का काम करता, ठीक है। जबकि मर्द का काम क्या होता है? वो बैठे मत रहे, वो घर के अंदर जो है ना वो चादर ओढ़ करके सो नहीं जाए, या जो है ना खाली मुसल्ला ना संभाल ले, मुसल्ला अपने वक्त के ऊपर और दावत का काम अपने वक्त के ऊपर, ठीक है जी। तो वमन इत्तबानी, जिसने मेरी इत्तबा करी, अब यहाँ पर ये जो है ना अदौ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि औरतें जो है वो दावत का काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, उनको मना है दावत का काम करना, नहीं, लेकिन उनकी पहली प्रायोरिटी उनका घर है, उनकी पहली प्रायोरिटी उनका घर है। अगर उनके घर में उनकी जरूरत है ना तो वो उसको छोड़ करके दावत का काम करने नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए कि घर अगर बर्बाद हो जाएगा तो फिर शैतान को मौका मिलेगा और शैतान की दावत कामयाब होगी, रहमान की दावत कामयाब नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद फिर वो अपने खानदान में दावत दें, अपनी महरम मर्दों को दावत दें, अपने जो है वो जान पहचान वाली औरतों को दावत दें, ठीक है ना। वो तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गई, पहले दिन की बात है ना ये। अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है मुसलमान हुई, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, उस वक्त जो है वो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी सेट हो रही थी। तो टॉप प्रायोरिटी सेट होने के वक्त अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी अलैहिस्सलाम को संभालने के काम में लगाया। अल्लाह ताला ने किस काम पे लगाया? नबी अलैहिस्सलाम को संभालना, राइट। जब नबी अलैहिस्सलाम परेशान हाल गार हिरा से घर पे उतरे थे, काबतुल्ला नहीं गए थे, काबतुल्ला देखते थे, गार हिरा से बैठ वहां बैठते थे जहां पे काबतुल्ला नजर आता था, तो भाग करके काबतुल्ला चले जाते, नहीं काबतुल्ला नहीं गए, बल्कि कहाँ गए? अपने घर गए, बैतुल्लाह नहीं गए बल्कि बैती गए, बैती, बैत के अंदर जो है ना वो मोहब्बत करने वाली और अकल रखने वाली, अकल को इस्तेमाल करने वाली बीवी मौजूद थी, वहां पे गए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये पूरी उम्मत के लिए जो है ना वो दो मॉडल्स दे दिए, एक मर्दों का मॉडल भी दे दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में, और एक औरतों का मॉडल दे दिया अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शक्ल में, ठीक है। आगे फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे, व सुभान अल्लाह, और पाक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं नहीं हूं मुशरिकों में से, अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराने वालों में से मैं नहीं हूं, वमा अरसलना मिन कबले का, और नहीं हमने भेजे आपसे पहले, मिन कबलिक आपसे पहले, इल्ला रिजालन सिवाय मर्द के, मर्दों के, इल्ला रिजालन सिवाय मर्दों के, नूही इलैहिम, हम वही भेजते थे उनकी तरफ, किन की तरफ? उन मर्दों की तरफ, मिन अहलिल कुरा, उन बस्ती के रहने वालों में हम उनको नूही इलैहिम मिन अहलिल कुरा, कुरा जो है वो अल कुरा ये बस्तियों को कहते हैं, जैसे उम्मुल कुरा बस्तियों की माँ, मक्का मुकरमा का नाम है उम्मुल कुरा, ठीक है। तो मिन का एक मफहूम क्या कि बस्ती वालों, बस्ती के रहने वालों की तरफ वही भेजते थे हम उनको, बस्तियों के रहने वाले, यानी वो जो 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 रिजाल होते थे ना वो बस्तियों के रहने वाले होते थे, ठीक है ना, कुरा के रहने वाले होते थे, ठीक है। आगे इसकी तफसीर में मजीद तफसील आएगी इंशाल्लाह। तो वो जो ऊपर अना व मन तबानी के अंदर ये तफसील हो गई, औरत का काम किया, मर्द का काम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मजीद अगली ही आयत के अंदर मजीद पिन डाउन कर दिया कि हमने जो नबी बनाए ना, जिनकी के ओढ़ना बिछोना दावत का काम था, जिनकी जिम्मेदारी दावत का काम थी, वो कौन थे? रिजाल, वो रिजाल थे, ठीक है। तो अब और कोई शुबा नहीं रह जाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो डिवाइड करी हैं, अलग अलग बनाई हैं, ठीक है ना, डिफरेंस रखा है, इक्वालिटी रखी है, लेकिन सेमनेस नहीं रखी है औरतों और मर्दों के, इनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, एक नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स, ठीक है ना, इनकी वन टू थ्री फोर अलग हैं, उनकी वन टू थ्री फोर अलग है, उनके यहाँ जो है वो फोर नंबर वन पर है, जो मर्दों में नंबर वन जो है ना वो उनके यहाँ नंबर फोर हो गया, ऐसी मिसाल के लिए समझा रहे हैं, वन टू थ्री फोर तो मिसाल के लिए खाली कह रहे हैं, मर्दों में जो नंबर नंबर वन है वो औरतों में नंबर फोर हो गया मिसाल के तौर पर, औरतों में जो नंबर थ्री है वो मर्दों के अंदर नंबर टू हो गया, यानी ऑर्डर डिफरेंट है, ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। अफलम यसीरू फिल अर्ध, अफलम, क्या फा जो है वो जायदा कहलाता है, अरबी जुबान की एक खूबसूरती है कि इस तरह से वो फा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, लम नहीं, यसीरू वो फिरते, सैर करना, सारा यसीरू जिसको उर्दू में फिर सैर के लफ्ज से अडॉप्ट कर लिया गया, अफलम यसीरू फिल अर्ध, क्या इन लोगों ने सैर नहीं की मुल्क में, जमीन में, अल अर्थ अर्थ में, फयंजुरू कैफ काना आकिबतुल लजीन मिन कबलिहिम, कि वो देख लेते, नजर करते, कैफ काना कैसे, हाउ काना हुआ, आकिबा अंजाम, आकिबत उर्दू में जैसे आकिबत कहते हैं, अल्लजीन मिन कबलिहिम, उन लोगों का जो इनसे पहले गुजरे, यानी पहले गुजरने वालों का क्या अंजाम हुआ, वो बस्ती, वो अगर जमीन में चलते फिरते ना तो वो देख लेते इन चीजों को। क्या उन्होंने चले फिरे नहीं? यानी चले फिरे लेकिन बस वही अंधों की तरह से, बहरों की तरह से, गूंगों की तरह से चले फिरे तो बहुत, चलते तो थे ये लोग लेकिन देखते नहीं थे, गौर नहीं करते थे ना। वला दारुल आखिरते खैरुल लिल्लज़ीना तक़ौ, और आखिरत का घर, दार घर के लिए, दार का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, खैरुन ज्यादा बेहतर है, लिल्लज़ीना तक़ौ उन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। ये दुनिया की जिंदगी जो है ना तकवा वालों के लिए ज्यादा बेहतर हो ही नहीं सकती, ज्यादा बेहतर। खैर का लफ्ज का मतलब क्या बनता है? ज्यादा बेहतर, अखयरु, असल में ये होता है अखयरु। ठीक है, दुनिया में क्या क्या मिल जाएगा? हुकूमत मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, दौलत मिल जाएगी, लेकिन वो दौलत भी कौन सी दौलत? बहुत ही छोटी सी दौलत, थोड़ी सी दौलत, अगर मिल भी गई तो, अगर मिल गई तो, वरना तो बहुत सौ को नहीं मिलती। ठीक है ना, तो आखिरत में जो मिलेगा उसके नजदीक तो वो जो आखिरी जन्नती होगा, आखिरी जन्नती, उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी? इस दुनिया से 10 गुना बड़ी आखिरी जन्नती को मिलेगी। तो जो पहला जन्नती होगा उसको कितनी बड़ी जन्नत मिलेगी, राइट? तो इस दुनिया, अच्छा अल्लाह ताला ने भी, नबी अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह के हुक्म से फरमाया जो फरमाया, इस दुनिया से कंपेयर किया तो 10 टाइम्स दिस प्लैनेट अर्थ। ठीक है ना, अब जो है ना वो ये जो 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 कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेस साइंसेस वगैरह वाले, तो वो हमें बताते हैं कि जी फलानी जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर जो स्टार्स हैं वो हमारे स्टार से बिलियंस ऑफ टाइम्स बड़े हैं, बिलियंस ऑफ टाइम्स, मिलियंस ऑफ टाइम्स, वो ऐसे बात करते हैं, मिलियन बिलियन, राइट? हमारा खुद अपना जो स्टार है, सन जिसको कहते हैं, उसके अंदर 1 मिलियन से ज्यादा अर्थ समा सकते। 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख प्लैनेट अर्थ जो है ना वो एक सन के अंदर समा सकते हैं। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड्स है ना, जो जो के अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर जो जो साइजेस हैं, तो वो साइजेस जो है ना वो तो कोई हैसियत ही नहीं रखते जन्नत के सामने, क्योंकि जन्नत जो है वो तो इस जाहिरी दुनिया, जो 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 ये फिजिकल वर्ल्ड है, इस फिजिकल वर्ल्ड से बाहर की चीज है, ऊपर की चीज है ये जन्नत। ठीक है, तो जब फिजिकल वर्ल्ड इतनी बड़ी है, जिसमें प्लैनेट जुपिटर ही को अगर आप देख लें तो हमारे अर्थ से पता नहीं कितना 100 गुना तो खाली एक प्लैनेट जुपिटर ज्यादा बड़ा है। ठीक है, तो फिर बाकी सोलर सिस्टम, और फिर उसके बाद जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी, और फिर मिल्की वे गैलेक्सी के बराबर में जो इन्होंने और टेलीस्कोप्स के जरिए से कुछ गैलेक्सीज जो है वो ज्यादा डिटर्मिनिस्टिकली डिस्कवर करके रखी हुई है, बाकी का तो बस ऐसी वो कैलकुलेशन है ना सारी की सारी। ठीक है ना, वो तो कैलकुलेशन है, कुछ पता नहीं कि वो कैलकुलेशन एक्चुअली है कि नहीं है। ठीक है, इट वुड टेक मोर देन 34,000 अर्थ्स टू मैच द मास ऑफ द सन, मैच द मास ऑफ द सन। ठीक है, हमने तो शायद मिलियन पढ़ा था, वो मिलियन कुछ और चीज का होगा नंबर, पर ये इसी तरह से बात करते हैं। 340,000, 34,000 नहीं, 340,000, क्या चलें, ये भी होगा कोई ना, ये सब कैलकुलेशन है ना। ठीक है ना, तो बहरहाल, वला दारुल आखिरत खैरुन लिल्लज़ीना तक़ौ अफला तअक़िलून, क्या अभी भी नहीं समझते? यानी अकल इस्तेमाल नहीं करते, राइट? अकल इस्तेमाल नहीं करते। अकल इस्तेमाल करने के लिए शर्त क्या है कि अकल कहाँ पे रिजाइड करती है? दिमाग में रिजाइड करती है, और दिमाग के दोनों तरफ अल्लाह ताला ने जो है ना वो, दोनों तरफ नहीं बल्कि चारों तरफ, चारों तरफ भी नहीं, तीन तरफ तो कम से कम कह सकते हैं, जो फिजिकल ओपनिंग्स हैं हमारी, इनपुट्स, ठीक है ना, राइट साइड पे एक कान है, लेफ्ट साइड पे एक कान है, और फिर इस साइड पे जो है ना वो दो आंखें हैं, और फिर जो है वो जो मुंह भी है, ठीक है, तो मुंह से भी इनपुट होती है, नाक से भी इनपुट होती है, सूंघ करके भी हम इंफॉर्मेशन इनपुट कर रहे होते हैं अपने अंदर किसी चीज के बारे में। जैसे खाना, खाने की खुशबू जो है वो आंखों से तो नहीं सूंघते ना, कानों से तो नहीं सूंघते ना, मुंह से चखते हैं, सूंघते तो नहीं है ना, तो नाक से भी इनपुट हो रही होती है जो कि दिमाग में जा रही होती है, और दिमाग के अंदर जो सलाहियत अल्लाह ने रखी है उसको अकल कहते हैं। ठीक है, तो अकल इस्तेमाल करने का मतलब क्या होता है कि ये जो इनपुट्स के रास्ते हैं ना, इन इनपुट्स के रास्तों को जो है वो इस्तेमाल किया जाए, ठीक है ना, कि इनपुट अंदर पहुंचे और फिर अकल्स में जो है वो इसको प्रोसेस किया जाए, सोचा जाए, गौर किया जाए, ठीक है। तो अब ये इनपुट्स के बारे में फिर बड़ी तफसीलात हैं जो कि मुख्तलिफ औकात पे होती रहती हैं। सबसे जो अहम इनपुट मैकेनिज्म या इनपुट पैथ्स हैं वो कान लगते हैं, कान, ठीक है। बहरहाल तो कानों को इस्तेमाल करते हैं, तो फिर अकल भी जो है वो उसको भी प्रोसेसिंग के लिए जो है ना वो रेलिवेंट मवाद, सबसे ज्यादा जो पिन पॉइंटेड और सबसे ज्यादा जो समझ लें फिल्टर्ड मवाद मिलते हैं ना, फिल्टर्ड टू द पॉइंट मवाद, टू द पॉइंट कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट, वो कानों के थ्रू मिलता है, कानों के थ्रू, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आंखों के थ्रू मिलता है, लेकिन आंखों के थ्रू इतनी ज्यादा मिक्स्ड इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि हम उसको जो है ना वो डिस्कर्न नहीं कर पा रहे होते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होते, ठीक है ना। आंखों का जो 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 वो है ना, यानी बहुत, यानी समझ लें कि एक नॉइज मिल रही होती है, विजुअल नॉइज, आंखों से एक विजुअल नॉइज, नॉइज शोर को कहते हैं, ठीक है ना। जबकि कानों से जो है ना वो हमें हर वक्त शोर नहीं मिल रहा होता, ठीक है, हर वक्त शोर ऑडियो नॉइज नहीं मिल रही होती, बल्कि हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। अगर कानों से हमें शोर मिलना शुरू हो जाए ना, तो हमारा सर फट जाए, हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाए। इस वजह से ना हम कान, हम ऐसी जगह पे जाते ही नहीं है जहां पे कि बहुत ज्यादा शोर, ठीक है ना, वरना तो सर में दर्द और जो है वो आपका दिमाग जो है वो काम ना कर सके। लेकिन जहां पे विजुअल की बात आती है, तो हम हर वक्त विजुअल नॉइज से एक्सपोज होते हैं। आपकी आंखें खुली हुई है ना, अब 180 डिग्रीज राइट से लेकर के लेफ्ट तक और 140 डिग्रीज ऊपर से लेकर नीचे तक सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर दाखिल हो रही है ना इन आईज के जरिए से। अब क्या आप उसमें डिटरमिन कर पा रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, यहाँ पे ये चीज रखी हुई है, यहाँ पे इसका ये रंग है, उसका ये रंग है, उसका ये ऐसा है, उसकी ये क्वालिटी है, उसके ऊपर ये चीज लिखी हुई है, उसके ऊपर ये चीज बनी हुई है? नहीं, कुछ भी आपके सामने नहीं आ रहा, सिवाय जो चीजों के ऊपर आपकी आंखें फोकस हुई हुई हैं, उनके अलावा कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये नॉइज इतनी सारी आंखों के जरिए से जा रही होती है, कानों के जरिए से ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कानों का सही इस्तेमाल, जो कानों की इस नेमत की कदरदानी करता है ना, सबसे ज्यादा उसकी अकल जो है ना वो ज्यादा अच्छी होती है कानों के इस्तेमाल सही करने वालों के ऊपर, वालों के लिए। तो किसी को तर्जुमे के बारे में कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, फिर हम खुला से तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं। फरमाते हैं कि ये किस्सा जो ऊपर बयान किया गया आपके एतबार से गैब की खबरों में से, ज़ालिक मिन अम्बाइल गैबी, यानी अल्लाह के एतबार से ये गैब नहीं है, अल्लाह ताला को हर चीज का इल्म है, लेकिन आपके एतबार से ये गैब है क्योंकि आपको हर चीज का इल्म नहीं है। गैब की खबरों में से, क्योंकि आपके पास कोई जाहिरी जरिया इसके जानने का नहीं था, इसके जानने का कोई जाहिरी जरिया आपके पास नहीं था, सिर्फ हम ही वही के जरिए से आपको ये किस्सा बतलाते हैं। नूही ही इलैक, हम वही करते हैं आपके पास, अम्बाउल गैब को हम आपकी तरफ जो है ना वही करते हैं। अच्छा, यानी इस किस्से को, इस वजह से ना ये जालिका जो है ना, ये जो जो इसमें इशारा है, तो ये एक चीज की तरफ पॉइंट, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, तो नूही ही हमने वही किया इस किस्से को आपकी तरफ। अच्छा, और ये जाहिर है कि आप इन बरादरान यूसुफ के पास उस वक्त मौजूद नहीं थे, ठीक है। वो तो अल्लाह भला करे कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद की हिफाजत करी है और किसी को जो है ना वो अभी तक मजाल नहीं हुई कि वो कुरान के ऊपर तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा सके, ठीक है ना। ये अल्लाह ताला की तरफ से हिफाजतों में से एक हिफाजत है, वरना इन जाहिलों और बदमाशों और गुंडों का बस नहीं चलता कि वो इस आयत के ऊपर जो है ना तौहीन रिसालत का इल्जाम लगा, ठीक है ना, कि आपको जो है ना वो माकुन तला दई है, आप नहीं थे वहां पर, نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی قرار دے کر کے تو پتہ نہیں کیا کر دیتے. ٹھیک ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے دی بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غنڈہ گردی ہے، اور یہ غنڈے جو ہیں نا، یہ ان کا تو حساب کتاب ہوگا، جب بھی ہوگا اللہ کے قدرت میں، اللہ کے فیصلے میں، جب بھی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نپٹے گا. ٹھیک ہے نا، لیکن ہمارے لیے جو ہے نا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان غنڈوں کو جو ہے نا، ان بدماشوں کو جو ہے نا، وہ اتنی چھوٹ کیسے مل گئی ہے، اتنا جو ہے نا یہ سر چڑھ کر کے بولنا، اور اتنا جو ہے نا یہ غالب کیسے آ گئے، ان کا فتنہ اتنا غالب کیوں آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی شاید ہماری آزمائشوں میں سے ایک ہے، یا ہماری سزاؤں میں سے ایک سزا ہے کہ یہ بدماش لوگ جو ہے نا، یہ جاہل، اور یہ بدماشوں کو اتنی چھوٹ کیسے مل جاتی ہے، کیونکہ جہلا کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے وہی جاہل ہوتے ہیں نا، تو جہلا اتنے زیادہ ہیں کہ یہ جو بولتے ہیں وہ جاہل مسلمان جو ہیں وہ مان لیتے ہیں اس کو، جو سو کالڈ مسلمان لیکن جاہل ہیں بالکل، رائٹ، وہ مان لیتے ہیں ان کی بات کو. یہ کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام والسلام کی رسالت میں توہین کر دی ہے، تو وہ جوہلا کا اتنا بڑا کراؤڈ موجود ہے، اتنا بڑا کراؤڈ موجود ہے کہ وہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کی پہلے بوٹیاں نوچیں گے، ہڈی پسلی یہ کریں گے، اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی نہیں پوچھیں گے کہ ہاں بھائی یہ کیا بات ہے، اس نے کری بھی تھی کہ نہیں کری تھی. تو علم کی کمی کی وجہ سے، جہالت کی اس کثرت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو پھر کھلی چھوٹ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ریزن، یہ ریزن ریزن میں سے ایک ریزن ہے، اور بھی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن دس از ایٹ لیسٹ ون آف دا ریزنز، جہالت. اچھا، تو وحی کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ قصہ بتاتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ آپ ان برادران یوسف علیہ السلام کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ، یعنی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کا پختہ کر لیا تھا. اذ اجمعوا امرهم، انہوں نے جو ہے نا وہ جمع کر لیا تھا، متفق ہو گئے تھے سارے کے سارے اپنے فیصلے کے اوپر. وہم یمکرون، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، اور وہ اس کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہیں کہ ان کو یوں لے جائیں وغیرہ ذلک. یہ عبادت جو ہے وہ اتنی میرے نزدیک کو شاید کلیئر نہیں، اور آپ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہیں کہ ان کو یوں لے جائیں وغیرہ جانے کا، اور اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ سخت آئے تھے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ. جی، وہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے نا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، اور بھی ہیں اس کے علاوہ بھی. سورہ بنی اسرائیل مکہ خواتین میں جو چل رہی ہیں نا، تو سورہ بنی اسرائیل کے تو جو آگے آیات آنے والی ہیں اگلی چند کلاسوں کے اندر، وہ تو سب سے زیادہ، یعنی حضرت جی نے جب اپنے بیان میں اس آیت کا ذکر کیا تھا نا، تو انہوں نے فرمایا تھا میرے میرے مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں اس آیت کا ترجمہ بھی کر سکوں، علماء کرام خود ہی ترجمہ کریں، خود ہی اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. تو قرآن مجید میں ہیں اس طرح کی آیات نا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی نہیں ہے آف کورس. ٹھیک ہے، لیکن جوہلا کو تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا نا، کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ان کو ایکسپلوئٹ کرنے والے جو ہیں وہ سینہ چوڑا کر کے پھر کام کرتے ہیں اپنے. بہرحال، تو فرمایا کہ اس طرح یہ عمر یقین ہے کہ آپ نے کسی سے قصہ سنا، سنایا بھی نہیں، بس یہ صاف دلیل ہے نبوت کی اور صاحب وحی ہونے کی، اور باوجود نبوت پر قائم ہونے کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو، اور ان کے ایمان نہ لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قرآن پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں، جس میں یہ احتمال ہو کہ اگر یہ قرآن کو قبول نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاوضہ فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اور آیت صرف اتنی تھی کہ آپ جو ہے وہ وما تسألهم هم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی اجر تو مانگتے نہیں ہیں. तो सिर्फ तमाम, वैसे तो इस तफसीर के ऊपर भी इनका बस ना चले जाए ना, ये जो हलावत बदमाश जो है वो इस तफसीर के ऊपर भी जो है वो तौहीन तौहीन रिसालत का हुक्म लगा दे। तो सिर्फ तमाम जहान वालों के लिए एक नसीहत है, जो ना मानेगा उसी को उसी का नुकसान होगा। और जैसे ये लोग मुनकरे मुनकरे नबूवत हैं, इसी तरह बावजूद दलाइल के मुनकरे तौहीद भी। अच्छा, चुनाचे बहुत सी निशानियां हैं कि तौहीद पर दलालत करने वाली आसमानों में, जैसे कि कवाकिब वगैरह, सितारे वगैरह, ये सब जो है वो अल्लाह ताला की निशानियां हैं, साइंस हैं अल्लाह ताला के। और जमीन में जैसे कि अनासिर व अंसरियात, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं जमीन के अंदर, वो सारी की सारी अल्लाह ताला के कुदरत के दलीलें हैं, जिन पर इनका गुजर होता रहता है, यानी उनका मुशाहिदा करते रहते हैं। ठीक है, यानी आंखें तो इनकी देखती हैं, लेकिन जहन जो है ना और दिल जो है वो इनका सोचता नहीं है, और वो उनकी तरफ जरा तवज्जो नहीं करते, यानी इनसे इस्तेदाल नहीं करते, यानी ये कंक्लूजन्स डिराइव नहीं करते। अकल का काम क्या है? कंक्लूजन्स डिराइव करना, कि अगर ये चीज ऐसे है और वो चीज वैसे है तो इसका कंक्लूजन ये है, इसका इसका नेट रिजल्ट ये है कि ऐसे होगा। ठीक है ना, वरना आंख तो देख लेती है, हाँ भाई ये चीज इधर पड़ी हुई है, इस चीज का ये शक्ल है, इसका ये रंग है, ये इतनी मोटी है, ये इतनी छोटी है। तो भाई मोटी है तो इसका कंक्लूजन क्या है? कि मोटी है का मतलब ये है कि उसका वजन ज्यादा होगा, राइट? हालांकि आपने उसको उठाया तो नहीं है, वजन किया तो नहीं है, ठीक है ना। तो अकल ने आपको बताया, अकल ने आपकी ये कंक्लूड किया कि अगर ये मोटी सी है और जो है ना ये हिल नहीं रही है अपनी जगह से, तो इसका मतलब यह है कि इसका वजन ज्यादा होगा। हालांकि आपके पास कोई वेट स्केल तो नहीं था कि जिसके ऊपर आपने उस चीज का वजन किया, ठीक है ना। तो अकल का काम किया है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, लेकिन ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते, ठीक है ना। तो कंक्लूजन ड्रॉ करना ये अकल का इस्तेमाल है। अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम भी अकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस्तेदलाल, ठीक है, इस्तेदलाल जो है वो टू ड्रॉ कंक्लूजन, टू कंक्लूड, ठीक है ना। ये इस्तखरजा, यस्तखरजु, इस्तिखराजन, ठीक है, जैसे वो इस्तिखारा, ये सारा जो है ना वो बाबे इस्तनसरा यस्तनसरु से, ठीक है। तो उसका मतलब यही होता है, टू सीक समथिंग, टू ड्रॉ समथिंग, ठीक है। तो दलील, दलील को ड्रॉ करना, दलील क्या चीज होती है? समथिंग दैट पॉइंट्स टू समथिंग एल्स, इसको दलील कहते हैं, ठीक है। तो भाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स पॉइंट टू अल्लाह, लेकिन ये नजर तो नहीं आ रहा होता कि अल्लाह की तरफ जो है वो दरख्त जो है ना उसकी तरफ, उसके अंदर एक एरो है, वो एरो जो है वो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है या अल्लाह के नाम की तरफ इशारा कर रहा है। बादलों के अंदर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था, और दरख्त जो है ना उसके अंदर एक एरो है जो कि अल्लाह के नाम के वाले बादल की तरफ इशारा कर रहा है। नहीं, ऐसा तो कोई कहीं नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ करना पड़ता है, आपकी आंखें जो है वो अल्लाह की तरफ इशारा करते हुए एरोज नहीं दिखाएंगी आपको, आपकी अकल से आपको कंक्लूड करना होगा। एंड इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, एंड इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है। कतई दलील, कतई दलाला इसी से निकला शायद, हाँ, वो वाली दलील जो कि यानी एब्सोल्यूट है, कंफर्म्ड है, उसको कतई दलाला कहते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा टेक्निकल, वो दूसरी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, लेकिन हाँ मैंने लफ्जी मतलब तो ऑफकोर्स यही है। अच्छा, कितना टाइम लगेगा? तो अक्सर लोग जो खुदा को मानते हैं तो इस तरह के शिर्क भी करते जाते हैं, ठीक है, यानी खुदा के वजूद को तो मानते हैं लेकिन शिर्क करते हैं। क्या मतलब? कि खुदा के वजूद को वैसे नहीं मानते जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने बताया। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बताया? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, ये नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, ठीक है ना। सिर्फ ये नहीं बताया कि अल्लाह है, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। तो क्या मतलब अल्लाह एक है, बाकी जो है ना वो अल्लाह नहीं है, वो लात है, वो मनात है, वो उज्जा है, वो ये है। अल्लाह एक है का मतलब क्या? कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर वहदहु ला शरीक लहु, यानी इतने एम्फेसिस के साथ एक ही है और उसका कोई शरीक नहीं। ठीक है, ये नबी अलैहिस्सलाम बताया, इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की तो माननी नहीं थी, तो इस वजह से शिर्क भी कर रहे होते थे, अल्लाह को मान भी रहे होते थे और शिर्क भी कर रहे होते थे। एथियस की तरह नहीं थे ये लोग, ये लोग एथियस नहीं थे, ये लोग मुल्हिदीन थे, ये सारे के सारे मुल्हिदीन थे। हत्ता के अभी तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब हमने मुकम्मल करी है, तो उसमें तो हमने ये तक पढ़ लिया कि शैतान भी, इब्लीस भी मुल्हिद है, मुल्हिद है, ये एथियस यानी दहरिया नहीं है, कोई भी दहरिया नहीं है, सर सारे ही मुल्हिद है, ठीक है ना। बस उसकी फिर डिफरेंट कैटेगरीज बन गई कि वो उस तरह के मुल्हिद हैं, ये इस तरह के मुल्हिद हैं, और आजकल जो है वो कादियानी तरह मुल्हिद हैं और उसी तरह के मुल्हिद हैं। ये कैटेगरीज है सारी की सारी इल्हाद की। तो फरमाते हैं कि बस बिदूने तौहीद खुदा का मानना मिसल ना मानने के, बस ये लोग अल्लाह के साथ भी कुफर करते हैं और नबुवत के साथ भी कुफर करते हैं, ठीक है। यानी अल्लाह ताला का मामला ऐसा नहीं है कि वो ये कहे कि चलो मानते तो है ना, कम से कम मुझे, मेरे वजूद का इनकार तो नहीं करते ना, चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगा इनको, नहीं। अल्लाह ताला का मामला ये है कि जैसा मैं चाहता हूं तुम मुझे वैसा मान, जैसा मैं नहीं चाहता तुम मुझे वैसे मत मानो, ठीक है ना। अपनी मर्जी से मत मानो, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे मानो, ये अल्लाह ताला का अटल फैसला है। अगर तुम अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे मानने की कोशिश करोगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे मानोगे तो इसी को शिर्क कहते हैं, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैं शिर्क को माफ नहीं करूँ, शिर्क को माफ नहीं करूँ। तो ये नहीं है कि अम्मी साहिबा जो है ना वो कहे अच्छा मुझे अम्मी तो मानता है ना, मेरा हुक्म नहीं मानता तो क्या हो गया, मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे नहीं मानता तो क्या हो गया, लेकिन मुझे अम्मी तो मानता है ना, मुझे मानता है ना कि हाँ मेरी एक अम्मी है, ठीक है, इतना का ये नहीं है, ये काफी नहीं है। वैसे तो अम्मा भी नहीं मानेंगी अगर वो दूसरी औरतों को जो है वो अपना अम्मा, अपनी अम्मा बनाना शुरू करे, तो अम्मी भी नहीं मानेंगी ये वाली बात, ठीक है ना। उस अम्मी वाली बात तो खैर हमें समझ में शायद ना आए, लेकिन शोहर साहब जो है ना वो जो गैरतमंद शोहर होते हैं, उनकी बेगम आके कहें कि मैं आपकी भी बीवी हूँ औरों की भी बीवी हूँ लेकिन आपकी भी बीवी हूँ, तो गैरतमंद शोहर तो नहीं मानेगा। हाँ बेगैरत शोहर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल तो और भी केसेस आते रहते हैं कि शोहर मियाँ जो है ना वो अपनी बीवी के साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है, तो वो बेगैरत शोहर होते हैं ना। अल्लाह रब्बुल तो बागैरत परवरदिगार है, बागैरत पर, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने कहा भाई मेरा यानी नबी को ना मानना, नबी की बात ना मानना, ये ऐसे ही है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो क्या अल्लाह और रसूल के मुनकर होकर फिर भी इस आयत से मुतमईन हुए बैठे हैं कि उन पर खुदा के अजाब की कोई ऐसी आफत आ पड़े जो उनको मुहित हो जाए, यानी उनको छा जाए, उनके ऊपर गाशिया हो जाए उनके ऊपर, यानी अल्लाह की नाफरमानी के बाद जो है ना ये नहीं हो सकता कि पिटाई ना हो, अजाब ना हो, ठीक है, या उन पर अचानक कयामत आ जाए और उनको पहले से खबर भी ना हो। मतलब ये है कि मुक्तज़ा कुफर का उकूबत है, ख्वाह दुनिया में नाजिल हो जाए या कयामत के दिन वाकई हो रहे, ठीक है। यानी कुफर का नतीजा जो है वो उकूबत ही है। कुफर का मतलब क्या होता है? इनकार कर, इनकार कर, इसको कुफर कहते हैं। अमल ना कर पाना, गलती से गुनाह हो जाना, ये कुफर नहीं होता, ठीक है। कुफर का मतलब होता है कि जो गुनाह है उसको ये कहना शुरू कर देना या दिल में ये इरादा कर लेना, ये मतलब पक्का दिल में सोच लेना कि नहीं ये नहीं है करने की चीज, जो करने की चीज थी वो नहीं है करने की चीज, दिल में सोच लिया पक्का, पक्का सोच लिया, यानी वसवसे नहीं बल्कि पक्का डिसाइड कर लिया कि नहीं जी ये तो ऐसे नहीं, इसको कुफर कहते हैं, ठीक है। तो कुफर के बाद फिर पिटाई लाजमी है। हाँ गुनाह का मामला ये है कि इट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन अल्लाह रहमत, कि अल्लाह ताला का रहमत का मामला अगर फैसला हो गया तो गुनाह को माफ कर देंगे, कोई और जो है वो तो तावील बन जाएगी, हालात जो है वो बड़े मुश्किल थे इसकी वजह से ये जो है वो गुनाह से ना बच सका, बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। कुफर की कोई एक्सक्यूज नहीं, कुफर की कोई एक्सक्यूज नहीं, यानी डिनायल की कोई एक्सक्यूज नहीं, डिनायल की, कुफर की कोई एक्सक्यूज, कितने ही बुरे हालात में आप, कितने ही जो है वो बुरे माहौल के अंदर इंसान, कुफर की गुंजाइश नहीं, ठीक है ना। वैसे गुनाह की भी कोई गुंजाइश नहीं निकलती, लेकिन गुनाह की मुआफी की गुंजाइश तो निकलती है ना, कुफर की मुआफी की कोई गुंजाइश नहीं निकलती, ठीक है ना। इस वजह से कुफर की गुंजाइश नहीं निकलती, इसी वजह से ईमान ये रेड लाइन है, ऐसे इसके नीचे कोई और लाइन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं हमारे लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि मैं खुदा की तरफ इस तौर पर बुलाता हूँ कि मैं तौहीद की और अपने दाई मिन अल्लाह होने की दलील पर कायम हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अला बसीरा को कायम होने से ट्रांसलेट किया, जबकि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ने, जो कि इनके उस्ताद थे, उन्होंने जो है वो कैसे ट्रांसलेट किया, समझ बूझ कर, मफहूम दोनों का एक ही है। तो मैं दलील के साथ कायम हूँ, मैं भी और मेरे साथ वाले भी, यानी मेरे पास भी दलील है तौहीद और रिसालत की, और मेरे साथ वाले भी इस्तदलाल के साथ मुझ पर ईमान लाए हैं। मैं बेदलील बात की तरफ किसी को नहीं बुलाता, दलील सुनो और समझो, बस हासिल तरीक ये हुआ कि खुदा वाहिद है और मैं दाई हूँ, मैं उसकी तरफ बुलाने वाला हूँ। मेरे पास दलील है कि अल्लाह ताला, जैसा मैं अल्लाह ताला के बारे में बता रहा हूँ वैसे ही अल्लाह ताला है, उसके खिलाफ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम की दलीलें भी जो है ना, वो बड़ी बड़ी शान वाली दलीलें थी। एक जगह पे फरमाते हैं अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम के बिहाफ के ऊपर, फकत लबिस्तु फीकुम उमरम बिन कब्ल, कि तहकीक के मैं तुम्हारे दरमियान इससे पहले एक उम्र रह चुका हूं, यानी मैंने अपनी उम्र तुम्हारे दरमियान ही गुजारी है। ये मेरी दलील है सदाकत की, ये मेरी दलील है सदाकत की। नबी अलैहिस्सलाम ने कहाँ से बात शुरू करी थी, शक्कुल कमर से बात शुरू करी थी, चांद को तोड़ करके दिखाया, टुकड़े करके दिखाया कि हाँ भी देखो मैं चांद को टुकड़े कर रहा हूँ, मान लो मेरी बात। ऐसे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत को शुरू किया, नहीं, शक्कुल कमर तो बहुत सालों बाद जाकर के हुआ, शक्कुल कमर, राइट। और भी बाकी जो इस किस्म के मामला थे वो सब बाद में जाकर के हुए। सबसे पहली दलील क्या थी कि तुम मेरी बात को मानते हो कि नहीं मानते हो, हाँ मानते हैं, आप सादिक हैं, आप अमीन हैं, ठीक है, ये दलील थी नबी अलैहिस्सलाम, अपनी उम्र, अपनी जात, अपना किरदार, ठीक है। तो ये दलील थी, और फिर उसके बाद और दलीलें बाद में आती गई साथ साथ, जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई तो दलीलें आती गई मजीद। तो अल्लाह शिर्क से पाक है और मैं इस तरीक को कबूल करता हूँ और मुशरिकीन में से नहीं हूँ। और ये जो नबुवत पर शुबा करते हैं कि नबी फरिश्ता होना चाहिए, महज मुहमल बात है, मुहमल यानी बिल्कुल बेकार किस्म की बात है ना, हल्की सी बात है। क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुख्तलिफ बस्ती वालों में जितने रसूल भेजे सब आदमी ही थे, जिनके पास हम वही भेजते थे, कोई भी फरिश्ता ना था जिन्होंने उनको ना माना, और ऐसे ही मुहमल शुबहात करते रहे। उनको सजाएं दी गई, इसी तरह उनको भी सजा होगी, ख्वाह दुनिया में ख्वाह आखिरत में। और ये जो लोग बेफिक्र हैं, तो क्या लोग मुल्क में कहीं चले फिरे नहीं कि अपनी आंखों से देख लेते कि इन लोगों का कैसा बुरा अंजाम हुआ जो उनसे पहले काफिर हो गुजरे हैं। और याद रखो कि जिस दुनिया की मोहब्बत में मदहोश होकर तुमने कुफर इख्तियार किया है, ये दुनिया फानी और हीच है, अलबत्ता आलम आखिरत उन लोगों के लिए नहायत बहबूदी की चीज है, बहबूदी यानी फायदे की चीज है, बहबूद वाली चीज है। जो शिर्क वगैरह से एहतियात रखते हैं और तौहीद और अतात इख्तियार करते हैं, तो क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि फानी और बेहकीकत चीज अच्छी है या बाकी और पायदार चीज अच्छी, ठीक है। यानी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चीज बाकी है, तो मैं चूंकि सच्चा हूं और तुम खुद मानते हो, यानी ये एक ऐसी कॉमन एग्रीमेंट है जो कि तुम में और मेरे दरमियान मुश्तरक है कि मैं भी अपने आप को सच्चा कह रहा हूं और तुम भी मुझे सच्चा कह रहे हो। तो ये जो कॉमनली एग्रीड पॉइंट होता है ना, यहां से बात चलती है, यू एंड आई बोथ एग्री ऑन दिस पॉइंट। तो इससे फिर हम कंक्लूड करते हैं कि व्हाट आई एम सेइंग नेक्स्ट इज आल्सो ट्रू, ठीक है ना। अगर ये कॉमन पॉइंट कहीं पे हम ना निकाल सकें, कॉमन इल्लत हम ना निकाल सकें, तो फिर हम किसी से बात, किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, किसी से हम जो है ना वो फिर ना तो आर्ग्यू कर सकते हैं, ना हम किसी को जो है ना वो कोई कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉमन प्रिंसिपल ना, वो सबसे अहम चीज क्या होती है दावत के लिए, टू फाइंड आउट वॉट इज कॉमन बिटवीन यू एंड द वन यू आर कॉलिंग, ठीक है। ये जो तलाश कर लेता है तो फिर वो आगे बात कर सकता है, और जो ये तलाश नहीं कर सकता तो वो आगे बात ही नहीं कर सकता किसी से। ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پہ عمل کے لیے بھی اور دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.